శ్రీతరకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాప్రజాతం సహగణరమణాసామృతం సంసజీవం సాద్వైతం సావధూతం వైజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాం సహగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణశ్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీ నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశకారిణీ నృపం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాకమహం వందే శ్రీగరుం దీనకారిణం వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధువేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణప్రేమప్రదాయకే కృష్ణాయ కృష్ణచైతన్య నామ్నే గౌరకృషే నమః పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపా స్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామే భక్తశక్తికం ఆరాధ్య భగవాన్ వ్రజేశతమే తద్ధామ వృందావనం రమ్యాకాశిదుపాసనా వ్రజవతు వైదేనయః కల్పితాం శ్రీమద్భాగవతం ప్రమాణమమలం ప్రేమాత్మార్థో మహాన్ శ్రీచైతన్య మహాప్రభో మతమిదం తత్తవదనాధరః హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే తత్ప్రకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ విశ్వానుసుతే దేవీ నమామి మరీశ్వరీ జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీఅద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే
హరే కృష్ణ తో ఆప్ సబ్ సున్ సక్తే హై వహాన్ అగర్ ఆప్ సబ్ సున్ సక్తే హై తో హాత్ ఊపర్ కీజియే इस तरफ आप सुन सकते हैं तो हाथ ऊपर कीजिए ठीक है तो सारे भक्त आ गए सारे बसें आ गए तो हम जिस स्थान में अब बैठे हुए हैं ये है पावन सरोवर और ये नंदग्राम के क्षेत्र में आता है पावन सरोवर के बारे में हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे लेकिन आज की हमारी यात्रा मूल नंदग्राम की है यहीं से थोड़ी दूर पर है एक पहाड़ के ऊपर है जिस पहाड़ का नाम है नंदीश्वर और पावन सरोवर इस पहाड़ के नीचे है आप तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य समाज में प्रकट होकर एक साधारण मनुष्य की तरह लीला करते हैं ब्रज में और जिस प्रकार से एक साधारण बच्चा कार्य करता है शरारत करता है और उसकी आयु धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आयु के हिसाब से उसका व्यवहार भी बदलता है तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मनुष्य समाज की नकल कर रहे थे और हम गोकुल में कल देख रहे थे कि उन्होंने वहां पर अपनी बाल व्यवस्था बिताई और वात्सल्य रस का आस्वादन किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हालांकि बाल व्यवस्था वास्तव में 5 साल तक होती है, लेकिन श्री कृष्ण की बाल व्यवस्था 3 वर्ष और 4 महीने की आयु में समाप्त हुई। जो विशेष व्यक्ति रहते हैं वो समय से जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। तो हालांकि श्री कृष्ण की आयु 3 वर्ष और 4 महीने की थी, लेकिन वो 5 साल के बच्चे के बराबर थे। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि उनकी कुमार अवस्था इस उम्र में खत्म हो गई। कुमार अवस्था के बाद पौगंड अवस्था है। साधारणतः पौगंड अवस्था 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था 3 वर्ष और 4 महीने से शुरू की और उनकी पौगंड अवस्था 10 वर्ष पे समाप्त न होकर 6 वर्ष और 8 महीने में समाप्त हो गई। अर्थात 5 साल की अवधि जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए 3 साल और 4 महीने की अवधि है। इसलिए जो 10 साल साधारण बच्चे के लिए लगता है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए 6 साल और 8 महीने लगे। तो उनकी पौगंड अवस्था इस आयु में समाप्त हुई। पौगंड अवस्था में उन्होंने वृंदावन में सख्य रस का आस्वादन किया अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। ग्वालों को, गौओं को, बछड़ों को चराने जाते थे, वन में अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करते थे। साधारणतः पौगंड अवस्था जब 10 साल या 10 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाती है तो किशोर अवस्था शुरू हो जाती है 11 से 15 की आयु तक। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की किशोर अवस्था 6 साल और 8 महीने से शुरू होकर सीधे 10 साल तक समाप्त हो गई। अर्थात साधारण बच्चे के लिए किशोर अवस्था 15 साल की आयु में समाप्त होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए किशोर अवस्था 10 साल की आयु में ही समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में जब भगवान श्री कृष्ण 10 वर्ष की आयु के थे वो एक 15 वर्ष के युवक के समान प्रतीत होते थे। और इसके बाद एक बहुत ही अद्भुत बात है कि जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक जैसे एक साधारण बच्चा बढ़ता है, उसके शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है बुद्धि की इत्यादि, वैसे श्री कृष्ण भी बढ़ते रहे। लेकिन जब 10 वर्ष की आयु तक पहुंचे उसके बाद बढ़ना बंद हो गया, फिर भगवान उसी तरह दिखने लगे, अर्थात 15 वर्ष के युवक के समान। इसको किशोर कहते हैं या नव यौवन कहते हैं, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे किशोर किशोरी हम रावल में कह रहे थे इसके बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण सदैव नित्य किशोर है, 15-16 साल के तरुण के समान सदैव लगते हैं। और इन्होंने अपनी किशोर अवस्था नंदग्राम में बिताई, जहां कि उन्होंने विशेष करके माधुर्य या श्रृंगार रस का आस्वादन किया। उन्होंने गोपियों के साथ बहुत लीलाएं की इस सारे क्षेत्र में। ऐसे कई लीला स्थली है यहां पर, लेकिन इन सब लीला स्थानों में जाना हमारे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि समय बहुत सीमित है, लेकिन थोड़े स्थानों में हम अवश्य जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहां 7 वर्ष की आयु से 10 वर्ष की आयु तक रहे। और 10वां जब जन्मदिन हुआ भगवान कृष्ण का यहां पर नंदग्राम में, उसके थोड़े ही महीने बाद अक्रूर जी आए और अक्रूर जी ने आकर कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने का प्रस्ताव रखा ब्रजवासियों ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, परंतु श्री कृष्ण ने उनसे कहा नहीं, मैं कल ही लौट के आऊंगा। और इसलिए ब्रजवासी तैयार हुए, हालांकि खुश नहीं थे इस बारे में बिल्कुल। और कृष्ण बलराम मथुरा चले गए। मथुरा में 28 साल की आयु तक रहे, उसके बाद वो द्वारका चले गए और 125 की आयु में भगवान का तिरुभाव हुआ। तो यहां पर नंदग्राम में भगवान श्री कृष्ण 3.5 साल रहे और उन्होंने तरह तरह की लीलाएं की, ग्वाल वालों के साथ भी किया, गोपियों के साथ भी किया, माता पिता के साथ भी किया, परंतु प्राधान्य यहां पर है माधुर्य रस का, गोपियों के साथ लीला। वैसे श्री कृष्ण के दादा का नाम था परजन्य। परजन्य महाराज को नारद मुनि से एक आदेश मिला था कि आप यहां पर इस क्षेत्र में आना और तपस्या करना। तो नारद मुनि के आदेश अनुसार परजन्य महाराज यहां पर आए थे, उन्होंने यहां पर तपस्या की और उसके बाद यहीं पर बसे। उनका परिवार भी यहां पे था और फिर नंद महाराज भी यहां पर बड़े हुए, उनका परिवार भी यहां था, उनका विवाह यहां हुआ नंदग्राम में। माता यशोदा भी उनके साथ में यहां रहती थी। लेकिन जैसे हम रावल में चर्चा कर रहे थे, कई सालों तक इधर नंदग्राम में नंद महाराज और माता यशोदा को और उधर बरसाने में वृषभानु महाराज और सीता देवी को संतान नहीं हुए थे। तो यहां पर एक बैठक हुई, नंद बैठक, ये भी पास में एक स्थान है। और इस बैठक में अक्सर नंद बाबा और उनके भाई और अन्य वरिष्ठ वैष्णव जैसे उपनंद इत्यादि वो एकत्र होते थे, ऐसे कोई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करते थे। तो इस बार वो बैठे, उन्होंने निर्णय लिया कि चलो अब गोकुल जाना ठीक रहेगा, यमुना के तट पर शायद ये अनुकूल होगा और हो सकता है कि नंद महाराज और माता यशोदा को एक पुत्र होगा। इसलिए नंदग्राम छोड़कर वो गोकुल चले गए। फिर गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ और गोकुल के बाद वो वृंदावन आए, वृंदावन से फिर यहां नंदग्राम आए। इस प्रकार से नंदग्राम में नंदग्राम का ये इतिहास है। नंद गांव, ये जो गांव है या ग्राम, ये एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। ये पहाड़ का नाम है नंदीश्वर। बरसाना ये भी पहाड़ के ऊपर स्थित है। बरसाने की कथा हम कल सुनेंगे। वो पहाड़ ब्रह्मा जी का एक रूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की ब्रज लीला में शामिल होना चाहते थे, तो उनको वरदान मिला कि वो बरसाने में एक पहाड़ बनेंगे और उसके ऊपर राधा रानी का मंदिर है। उसी प्रकार से शिव जी भी बहुत लालायित थे कि मुझे भी भगवान कृष्ण के ब्रज लीला में शामिल होना है, दर्शन करना है उन लीलाओं का। तो उन्होंने हजारों हजारों दिव्य सालों तक तपस्या की। दिव्य साल मतलब देवताओं के साल। हमारे 6 महीने जो होते हैं वो देवताओं के 12 घंटे होते हैं। तो हमारा पूरा 1 साल उनके लिए पूरा 1 दिन रात मिलाकर, तो हम समझ सकते हैं कि देवताओं के लिए 1 वर्ष कितना लंबा होगा हमारे दृष्टिकोण से। ऐसे देवताओं के हजारों वर्ष तक शिव जी ने तपस्या की। और जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने, तो भगवान ने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि मुझे पता चला है कि द्वापर के अंत में आप यहां ब्रजभूमि में प्रकट होंगे। मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मेरे अंदर तीव्र इच्छा है कि मैं आपके ब्रज लीला में शामिल हो जाऊं, भले एक पत्थर के रूप में हो, भले कोई एक घास के तिनके के रूप में हो, बल्कि यहां तक कि बिल्कुल धूल के कण के रूप में भी मैं यहां उपस्थित होने के लिए तैयार हूं, मैं बहुत ही इच्छुक हूं। तो भगवान ने कहा, धूल का कण क्यों, तुम्हें पहाड़ी बनो और तुम्हारे ऊपर मैं सब लीला करूंगा। तो फिर शिव जी यहाँ पर ब्रज में पहाड़ बने और यहाँ ये पहाड़ का नाम है नंदीश्वर पर्वत। तो भगवान श्री कृष्ण के कृपा से शिव जी यहाँ पर विराजे हैं ब्रज में एक पर्वत के रूप में। इस पर्वत के ऊपर गांव है और यहाँ पर एक मंदिर है जो अभी नंद बाबा का मंदिर कहलाता है, नंदग्राम मंदिर कहलाता है। ये पहले भगवान श्री कृष्ण या नंद महाराज का घर हुआ करता था वहां पर और ये उनकी राजधानी थी। बहुत तरह तरह के ऐश्वर्यों से युक्त था ये शहर नंदग्राम। इस शहर का वर्णन भी जगह जगह शास्त्रों में सुनने में आता है। इतना ऐश्वर्य की इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यहाँ पर इस समय मंदिर के अंदर कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, दोनों त्रिभंग रूप में हैं, बांसुरी बजाते हैं कृष्ण बलराम दोनों ही। साथ साथ में नंद महाराज और यशोदा की मूर्तियां भी हैं जो कि बहुत बड़ी हैं और साथ साथ में श्रीमती राधारानी की एक मूर्ति है एक और दूसरी ओर मधुमंगल और सुदामा जो कृष्ण के सखा थे उनकी भी मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों की स्थापना वज्रनाभ ने की थी जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। लेकिन इन मूर्तियों की स्थापना होकर कई साल बीत गए, 5000 साल बीत गए। जब चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए ब्रजधाम की यात्रा करने के लिए तो उस समय वो नंदग्राम भी आए, यहां पर भी आए पावन सरोवर में, यहां भी उन्होंने स्नान किया और नंदीश्वर को दंडवत करके ऊपर जा रहे थे। उन्होंने वहां ब्रजवासियों से पूछा कि वहां ऊपर कोई विग्रह है क्या, कोई मंदिर है क्या? तो लोगों ने कहा हाँ वहां पर है, दो है, एक पुरुष एक स्त्री, बड़े हृष्ट पुष्ट हैं, बड़े हैं, विशाल हैं और उनके दो बच्चे भी हैं और ये बच्चे ऐसे बंके हुए हैं। तो चैतन्य महापुरुष बड़े प्रसन्न होकर ऊपर चले गए। बंके हुए बच्चे कौन है? कृष्ण बलराम। तो वहां पर वो ऊपर चले गए। उस समय वहां पर मंदिर नहीं था, ये सारे विग्रह जो हैं ये एक गुफे में थी। महाप्रभु ने गुफे के अंदर इनका दर्शन किया, इनका स्पर्श भी किया, भाव विभोर होकर कीर्तन किया। कई दिन यहां पर रहे चैतन्य महाप्रभु और फिर और अपनी आगे यात्रा में निकल पड़े। तो ये विग्रह आज भी हैं यहां पर ऊपर और आगे थोड़ी देर बाद हम ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए और वहां कीर्तन करेंगे। अब ऐसा हुआ कि जब एक बार शिवजी अपने प्रत्यक्ष रूप में आना चाहते थे, पर्वत रूप में तो थे ही, अब वो श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने के लिए और भी अपने रूप में आना चाहते थे। तो जब यहां पास में आए तो एक कोकिल वाणी में कोकिल की आवाज उन्होंने की ताकि कृष्ण समझ जाए कि वो आए हैं यहां पर। और जिस स्थान से उन्होंने ऐसे आवाज की उसको कोकेश्वर कहते हैं। तो कोकेश्वर महादेव भगवान श्री कृष्ण का एक लिंग है, वहां पर शिव जी का लिंग है कोकेश्वर महादेव, शायद हम वहां पर नहीं जाएंगे। और फिर जैसे ही वो द्वार पे आए और दरवाजा खटखटाया तो माता यशोदा ने दरवाजा खोला और घबरा गई कि अरे ये कौन है। एक योगी के तरह दिख रहे थे शिव जी, जटाएं थी और गले में सांप और बिच्छू और स्मशान का राख जो है शरीर पे लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? उन्होंने सोचा ये कोई बाबा जी है जो माधुकरी करने आए हैं, नहीं मैं आपके लाला का दर्शन करने आया हूं। तो माता यशोदा ने जब देखा कि उनका रूप कैसा भयानक था, उन्होंने कहा नहीं बाबा नहीं, मेरे लाला का दर्शन नहीं करना, मेरा लाला घबरा जाएगा तो आप दर्शन नहीं कर सकते। आप तो बाबा जी हैं, शायद आप माधुकरी करने के लिए आए हैं, तो ये लीजिए थोड़ी रोटी है, रोटी लेकर आप चले जाइए। शिव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया माता यशोदा को लेकिन माता यशोदा नहीं मानी। तो रोटी लेकर शिव जी चले गए। पास में ही एक वन था, उसमें बैठे और उनके हृदय में वो आशा बनी रही कि एक दिन आएगा जब मैं यहां नंदगांव में श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा करूंगा। तो ये आशाबद्ध अवस्था की वजह से उनका नाम हो गया आशीश्वर महादेव। आशा रख रहे थे कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। तो हमें भी ऐसे आशा रखनी चाहिए हृदय में कि एक दिन हमारा भी आएगा जब हम श्री कृष्ण के चरणों में पूर्णतया स्थान प्राप्त करेंगे। और उस वन को आशीश्वर वन कहते हैं और वहां जो शिवलिंग है उसको आशीश्वर महादेव कहते हैं। तो शिव जी वहां पर कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हुए थोड़ा बहुत शोक करते हुए बैठे हुए थे। उधर श्री कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया और रोना बंद ही नहीं करे श्री कृष्ण। माता यशोदा ने बहुत प्रयास किया श्री कृष्ण के रोने को बंद करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण रोना बंद नहीं कर रहे थे। बहुत चिंतित हो गई माता यशोदा और सारे गोपियां भी वहां पर आईं कि क्या बात है। माता यशोदा ने कहा कि देखो थोड़ा समय हो गया, कृष्ण बहुत रो रहा है जोर जोर से और रोने का बंद करने का नाम नहीं ले रहा है, क्या किया जाए। तो उस अन्य गोपियों ने भी प्रयत्न किया, वो भी असफल हो गई। अंत में एक वृद्ध गोपी थी, बहुत बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा कि यशोदा ये बताओ क्या तुम्हारे घर में कोई अतिथि आया था जिसका अपमान तुमने किया है। अतिथि का अपमान करने से जो है अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। तो माता यशोदा सोचने की कौन कौन आया था। हाँ देखिए वृषभानु महाराज आए थे और ये आए थे वो आए थे और हाँ हाँ एक योगी भी आए थे यहाँ पर। अच्छा तो योगी आए तो उनका अच्छा सत्कार किया तुमने। नहीं सत्कार तो नहीं, वो तो दिखने में इतना भयानक था, वो मेरे लाला का दर्शन करना चाह रहा था और मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, तो मैंने भगा दिया और कहा कि जाओ, थोड़ी रोटी हाथ में देकर मैंने उनको भेज दिया। तो फिर उस वृद्ध गोपी ने कहा कि ये कारण हो सकता है कि अतिथि का अपमान हुआ और उस योगी की बुरी नजर लाला के ऊपर लगी होगी, इसलिए ऐसे रोना बंद नहीं कर रहा है। तो अभी उस योगी को जाके ढूंढना चाहिए जहां भी वो हो। तो अब कहां ढूंढे, वो तो चले गए। फिर सारे ब्रजवासी इधर उधर निकल पड़े ढूंढने के लिए कि ये योगी बाबा कहां पर है। अंत में वो मिले आशीश्वर वन में और उन्होंने कहा बाबा आइए, अब आप दर्शन कीजिए कृष्ण का। तो बड़े खुशी से शिव जी वहां से आए, आशीश्वर वन से सीधे नंदीश्वर के ऊपर आए और माता यशोदा ने बड़े भारी हृदय से एक दर्शन कराया कृष्ण का। दरवाजा खोला, देखो तो कृष्ण फिर से बंद कर दिया। बस एक दर्शन, वो आपको दर्शन करना था ना, दर्शन हो गया। वो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण इस योगी को देखे, क्योंकि दिखने में ऐसे थे वो। माता यशोदा डर रहे थे कि श्री कृष्ण कहीं डर के मारे और ज्यादा रोनाना शुरू करे। जब ऐसे दर्शन किया शिव जी ने और दरवाजा बंद हुआ, फिर भी श्री कृष्ण का रोना बंद नहीं हुआ। तो माता यशोदा कहने लगे, अरे आपने तो दर्शन किया, अभी भी मेरा लाला क्यों रो रहा है। तो शिव जी ने कहा आपका लाला रोना तब बंद करेगा जब उसके चरण कमल मेरे सर के ऊपर सर को स्पर्श करेंगे। अरे नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और पास में जो गोपियां बैठी थी उन्होंने कहा अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, करो, रोना तो बंद कर देगा कम से कम। तो माता यशोदा कहने लगे, नहीं देखो गले में सांप है बिच्छू है ये वो, अरे कोई काट देंगे तो कृष्ण को क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, करो। तो ऐसे गोपियों के बीच में थोड़े समय के लिए वाद होता रहा। अंत में सारे गोपियों को विजय प्राप्त हुआ और माता यशोदा को उनकी बात माननी पड़ी। तो भयभीत होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श शिवजी से कराया, शिवजी के सर से कराया। और उस समय श्री कृष्ण देखने लगे, श्री कृष्ण ने भी शिवजी का दर्शन किया। जैसे ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श शिवजी के सर से हुआ, शिवजी इतने आनंदित हो गए कि वो बड़े भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे अपने डमरू बजा बजाकर। और इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण फूट फूट के हंसने लगे। आप तो जानते हैं कि कोई छोटा बच्चा जब ज्यादा हंसता है तो बहुत प्रिय दृश्य होता है। तो जब श्री कृष्ण ऐसे बाल्यावस्था में हंसने लगे तो हम समझ सकते हैं कि कितना आकर्षित हुआ होगा वो दृश्य। सारे गोपियां बहुत आकर्षित हो गईं और माता यशोदा इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने शिवजी से कहा कि बाबा अभी आप हमेशा यहीं पर रहना, क्योंकि आप रहोगे तो यहां मेरा लाला हमेशा हंसता रहेगा। तो शिवजी, अब माता यशोदा नहीं जानती थी कि ये शिवजी है, वो तो सोच रहे थे ये तो बाबा है। तो शिवजी कहने लगे ठीक है रहूंगा, लेकिन मेरे दो शर्त हैं। क्या शर्त है? मेरे शर्त ये हैं कि पहली बात, जब आप श्री कृष्ण को नहलाएंगे तो वो चरणामृत जो है सबसे पहले मेरे सर के ऊपर छिड़काना चाहिए, मैं यहां पास में रहूंगा। और दूसरी बात, जब आप श्री कृष्ण को भोजन खिलाएंगे तो श्री कृष्ण का महाप्रसाद मुझे मिलना चाहिए। तो माता यशोदा ने कहा हाँ ठीक है कर देंगे। और आज भी ये प्रथा है। बद्रीनाथ में 5000 वर्ष पूर्व एक शिवलिंग की स्थापना की वहां पर ऊपर ही, और भगवान शिव के उस रूप को नंदीश्वर महादेव कहते हैं। और आज भी वहां ऊपर जो पुजारी हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत छिड़काते हैं शिवलिंग के ऊपर, और कृष्ण प्रसाद वो शिवजी को अर्पण करते हैं। आज भी ये प्रथा चल रहा है। तो ये सही तरीका है देवी देवताओं की उपासना करने का। अगर किसी को करना भी है तो इस भाव से करना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और उनको भोग न चढ़ाकर अगर कुछ अर्पण करना ही है तो कृष्ण प्रसाद अर्पण करना चाहिए, जैसे यहां पर शिवजी को होता है। इसलिए वहां पर नंदीश्वर महादेव विराजे हैं ऊपर। यहां पर नंदीश्वर महादेव 5 प्रमुख दिक्पालों में से एक है। इस ब्रज क्षेत्र में कई शिवलिंग हैं और इनका कर्तव्य है कि ये दिक्पाल हैं, ब्रज की रक्षा करते हैं। वो मायापुर में भी ऐसे हैं। अक्सर देखा जाता है कि भगवान विष्णु या कृष्ण के जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं वहां पे शिवजी दिक्पाल के रूप में उपस्थित रहते हैं, रक्षा करते हैं ताकि कोई अशुभ घटना न हो या कोई असुर या ऐसे कोई बुरा आदमी यहां पर आके कोई उत्पात न करे। इसलिए उस दिन से नंदग्राम में कोई असुर वगैरह नहीं आया। तो शिवजी अब वहां पर विराजे हैं। तो ये है नंदग्राम के मंदिर और नंदीश्वर की कथा। तो देखिए शिवजी का कृष्ण लीला में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। केवल यहां पर नंदगांव के पास पास शिवजी के कितने रूप हुए बताइए, हमने कितने रूपों का वर्णन किया अभी। पहले नंदीश्वर महादेव, दूसरे आशीश्वर महादेव, तीसरे कोकेश्वर महादेव, चौथे नंदीश्वर पर्वत। पर्वत ही तो शिवजी का रूप है, शिवजी ही पर्वत रूप में वहां पर विराजे हुए हैं। और कितना घनिष्ठ संबंध है कृष्ण लीला से कि आज भी पुजारी चरणामृत और कृष्ण प्रसाद शिवजी को अर्पण करते हैं। तो शिवजी महान वैष्णव है, वैष्णवानां यथा शंभुः, इसलिए हमारे लिए भी वो पूजनीय है। लेकिन शिवजी की पूजा स्वतंत्र रूप से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है। शिवजी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो इसी प्रकार से यहां और कई तीर्थ क्षेत्र हैं। जिस स्थान में हम अब बैठे हैं यह है पावन सरोवर। पावन मतलब जो सबको शुद्ध करता है। यहां पर गोपियां आती थीं इस बहाने कि उनको कुछ साफ जल चाहिए भरने के लिए अपने मटकों में, लेकिन वास्तव में उनको यहां आने का कारण था कि वो श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी। माता यशोदा यहां श्री कृष्ण को कभी कभी लाती थी श्री कृष्ण को नहलाने के लिए, कृष्ण गोचारण लीला समाप्त करने के बाद संध्या के समय यहाँ पर आते थे तो गायों को नहलाकर यहाँ पानी पीते भी थे। नंद बाबा और अन्य ब्रजवासी भी यहाँ पर आते थे, गोपगण यहाँ आते थे स्नान करने के लिए। तो बहुत ही पावन स्थान है। श्रीमती राधा रानी यहाँ पर आकर श्री कृष्ण के लिए रसोई बनाती थी और यहाँ पर एक कुआं है जिसमें से वो पानी भी निकालती थी। एक बार ऐसे हुआ कि दुर्वासा मुनि वो यहाँ ब्रज में आए और उस समय श्रीमती राधा रानी एक छोटी सी बालिका थी, तो उस समय वो मिट्टी से वो पूरी कचौरी वगैरह बनाती थी ऐसे खिलौने के रूप में, जैसे छोटे बच्चियां कभी करती हैं, वो छोटे छोटे मिट्टी से कुछ न कुछ बनाते हैं। तो ऐसे खेल खेल में श्रीमती राधा रानी जो कि बहुत छोटी उम्र की थी उस समय, उन्होंने ऐसे पूरी वगैरह लड्डू वगैरह बनाए मिट्टी के। और दुर्वासा मुनि जब वहां आए तो उन्होंने दुर्वासा मुनि से बहुत मधुर ढंग से कहा कि आप भी इसको खाइए। दुर्वासा मुनि को श्रीमती राधा रानी का भाव बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो तो बड़े थे, बच्चे नहीं थे, वो तो जान गए ये तो मिट्टी है, मिट्टी के लड्डू थोड़े खाया खाया जाता है, तो उन्होंने खाए नहीं। फिर भी श्रीमती राधा रानी बहुत आग्रह किया बहुत मीठे ढंग से, तो उस समय दुर्वासा मुनि ने थोड़ा चख लिया उस लड्डू को, मिट्टी के लड्डू को, और वो अमृत के समान स्वादिष्ट था। अमृत के समान नहीं बल्कि साक्षात अमृत ही था वो। और दुर्वासा मुनि आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा अमृत का स्वाद मैंने कभी भी चखा नहीं है। उस समय दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया श्रीमती राधा रानी को। आप तो जानते हैं कि दुर्वासा मुनि शिवजी के ही अंश अवतार हैं। शिवजी का और एक नाम है आशुतोष। आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब संतुष्ट होना। शिवजी बहुत ही जल्दी संतुष्ट होकर वरदान दे देते हैं, जैसे उन्होंने भस्मासुर को दिया। कोई उनको प्रसन्न करता है बिना सोचे बस वरदान दे देते हैं, बड़े उदार हृदय के हैं। साथ साथ शिवजी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया क्रोध में आकर। तो क्योंकि दुर्वासा मुनि उनके अंश हैं, इसलिए शिवजी के ये गुण दुर्वासा मुनि के अंदर भी हैं। और दुर्वासा मुनि तो अपने क्रोध के लिए बड़े विख्यात हैं, इसलिए सभी लोग घबराते हैं दुर्वासा मुनि के पास जाने के लिए। लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऐसे कोई डर नहीं, और छोटे बच्चे कोई अपराध कर भी बैठते हैं तो बड़े लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो इस समय दुर्वासा मुनि इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया श्रीमती राधा रानी को कि जो तुम्हारा पकाया हुआ भोजन खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा, उसकी आयु लंबी होगी और उसको बहुत जीवन में आनंद आएगा। और दुर्वासा मुनि चले गए। माता यशोदा को ये पता चला कि ऐसे दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया है श्रीमती राधा रानी को, तो माता यशोदा चाहते थे कृष्ण की भलाई, कि कृष्ण को कभी बीमारी ना हो। फिर माता यशोदा ने राधा रानी से कहा आज से तुम मेरे लाला के लिए रोज भोजन बनाओगी। इसलिए श्रीमती राधा रानी यहाँ पावन सरोवर के तट पे आके श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाया करती थी। एक दिन ऐसे हुआ कि श्री कृष्ण माता यशोदा के रसोई में गए। वहां माता यशोदा तरह तरह के व्यंजन बना रही थी, तो कृष्ण ने पूछा कि माता आप ये सब इतने सारे व्यंजन क्यों बना रही हो। माता यशोदा ने कहा क्योंकि अभी तुम्हारे पिता नंद बाबा वो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो साथ में मैं भोजन दे रही हूँ। अच्छा, कौन सी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो प्रयागराज जा रहे हैं। अच्छा, प्रयाग कहाँ है। तो उस समय माता यशोदा थोड़ी व्यस्त थी रसोई में, तो उन्होंने कहा बहुत सवाल करते हो तुम, जाओ अपने पिता से पूछो। तो फिर कृष्ण सीधे गए नंद बाबा के पास। पिताजी आप ये प्रयाग जा रहे हो, तो प्रयाग क्या है और क्यों जा रहे हो आप वहां पे। मैं कहा वो तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वहां पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, वहां जाने से हम शुद्ध हो जाते हैं हमारे पापों से, इसलिए मैं वहां पर आज जा रहा हूं। तो बाबा कल अक्षय तृतीया है, तो आज के बजाय आप कल क्यों नहीं जाते? ठीक है कृष्ण, तुम बोल रहे हो तो हम कल जाएंगे, आज नहीं। तो अगले दिन अक्षय तृतीया के दिवस पर प्रातः काल में नंद बाबा यहां पर आए इस सरोवर में स्नान करने के लिए, और जैसे ही पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़ा व्यक्ति, विशाल, वो जोर जोर से हंस रहा है, बड़े आनंद में भाव विभोर होकर हंस रहा है और वो स्नान कर रहा है यहां पर। तो उन्होंने कहा, नंद बाबा ने कहा कि आप कौन हो और कहां रहते हो? मेरा नाम प्रयाग है। प्रयाग? यहां तो नंदगांव में प्रयाग नाम तो कोई आदमी तो नहीं रहता। नहीं, मैं तो यहां का नहीं हूं, मैं प्रयागराज हूं। मैं प्रयागराज यहां इस सरोवर में स्नान करने आया हूं। यहां क्यों स्नान करने आया? तो साल भर जो है, और विशेष करके अक्षय तृतीया के दिन पर सब लोग मुझ में स्नान करने आते हैं और अपने पाप छोड़ जाते हैं। वो तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन पापों का बोझ मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए हर अक्षय तृतीया के दिन मैं यहां पर आता हूं मेरे पापों को मुक्त करने के लिए। यहां इस सरोवर में स्नान करता हूं तो मैं शुद्ध हो जाता हूं, पवित्र हो जाता हूं, पापों से मुक्त हो जाता हूं। अच्छा, हाँ, केवल मैं नहीं, सारे जो पवित्र नदियां हैं वो भी यहां स्नान करने आती हैं। देखो देखो, सामने देखो। तो नंद महाराज ने देखा कि कई सुंदर महिलाएं वहां पर थीं और हरेक ने अपना परिचय दिया, मैं गंगा देवी हूं, मैं कावेरी देवी हूं, मैं नर्मदा देवी हूं, मैं सिंधु देवी हूं, मैं सरस्वती देवी हूं। तो सारे जितने भी पवित्र नदियां थीं वो भी यहां अक्षय तृतीया के दिन आते थे स्नान करने के लिए, क्योंकि हर पवित्र नदी में लोग स्नान करते हैं पापों से मुक्त होने के लिए, और ये नदियों में पाप आ जाता है। तो जब नंद महाराज ने ये देखा तो उनका मन बदल गया, और फिर जब वापस घर में आए तो कृष्ण ने उनको पूछा कि बाबा क्या बात है, आप प्रयागराज नहीं जाएंगे? नहीं, अब प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है, अब यहीं पर हम रहेंगे। तो कृष्ण भगवान की एक चाल थी, चाल तो कई लीला है भगवान की, और ये सत्य है, ये सरोवर इतना ही पावन है, इसलिए इस दिन के बाद इस सरोवर का नाम हो गया पावन सरोवर। यहां पर पास में सनातन गोस्वामी की समाधि है, भजन कुछ समाधि जैसे समाधि नहीं, यहां पर वो रहा करते थे, विशेष करके एकांत में वो रहा करते थे, एकांत में रहकर वो भजन किया करते थे यहां पर, और बिल्कुल अपने खाने पीने की, अपने शरीर की परवाह नहीं करते थे, माधुकरी भी नहीं करते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक ग्वाल बाल उनके पास में आया और कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपके लिए थोड़ा सा दूध लाया हूं इस मटके में। अच्छा, दूध कैसे लाए मेरे लिए? हाँ, यहां पास में रहने वाले जो गोप हैं उन्होंने बताया कि यहां एक बाबा जी हैं, वो माधुकरी भी नहीं करते हैं, रहने का भी कोई स्थान उनका नहीं है, और भूखे होंगे, जाके उनको दूध पिलाएं, हमारे क्षेत्र में किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आया हूं। तो फिर सनातन गोस्वामी ने वो पात्र लिया और वो बच्चे ने कहा कि आप इसको पी लीजिए, मैं बाद में आकर पात्र ले लेता हूं। ऐसी एक घटना और कहां हुई थी बताइए? माधवेंद्रपुरी के साथ। कहां पर? गोविंद कुंड के पास। तो उसी तरह की घटना यहां पर सनातन गोस्वामी के साथ हुई। तो सनातन गोस्वामी ने जब वो दूध का पान किया तो सारे अष्टसात्विक विकार जो है, भक्ति के लक्षण है, वो उनके शरीर में प्रकट हो गए, और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण हुए होंगे जो मेरे पास आए, और ये तो साधारण दूध नहीं है, ये तो साक्षात अमृत है। और फिर सनातन गोस्वामी समझ गए कि श्री कृष्ण उनकी अति तपस्या से प्रसन्न नहीं है, वो चाहते हैं कि वो कुछ भोजन भी करें, कुछ माधुकरी करें, ऐसे नहीं कि पूरा उपवास ही करें, और उसके बाद ब्रजवासियों ने सनातन गोस्वामी के लिए यहाँ पर एक भजन कुटीर बनवाया। तब तक सनातन गोस्वामी के पास कोई भजन कुटीर ही था नहीं, यहाँ पर केवल एक कहीं एक वृक्ष के नीचे रहते, कभी दूसरे वृक्ष के नीचे रहते। और एक बार श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जाओ नंदीश्वर के ऊपर, देखो एक गुफा है, उस गुफा में मूर्तियां हैं और मूर्ति की स्थापना करो और पूजा आरंभ कराओ। फिर सनातन गोस्वामी ऊपर गए और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने देखा था कि गुफे में वो विग्रह हैं, वहां जाकर उन्होंने उन मूर्तियों को लेकर उनकी स्थापना के ऊपर और उसके बाद वहां मंदिर का निर्माण हुआ। तो सनातन गोस्वामी यहां अक्सर रहा करते थे, कभी कभी रूप गोस्वामी भी यहां पर आया करते थे। इसलिए स्थान बहुत ही पवित्र है, न केवल राधा कृष्ण की लीला यहाँ पर हुई है लेकिन सनातन रूप गोस्वामी भी यहाँ पर रहे और कई साधु कई वैष्णव भक्त महान आचार्य भी यहाँ पर आए और उन्होंने लीला की यहाँ पर। तो ये है पावन सरोवर और सनातन गोस्वामी की समाधि। यहाँ पास में और भी कई तीर्थ स्थान है, एक विशेष स्थान है, अगर समय मिले तो शायद हम वहां पर जाएंगे, वहां कथा करने के लिए शायद परिस्थिति ठीक नहीं होगी, और वो है मोती कुंड। और ये लीला जो है रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मुक्ता चरित में वर्णन करते हैं कि एक बार ऐसे हुआ कि गोवर्धन के पास एक जगह है मल्लिहारी कुंड, उधर श्री कृष्ण गए और उन्होंने देखा कि वहां पर गोपियां बहुत ही सुंदर मोतियों से वो हार बना रहे हैं। तो श्री कृष्ण उनसे जाकर पूछा कि ऐसे थोड़े दो तीन हार मुझे भी दे दो, ये मोतियां तो बहुत अच्छे हैं पर्ल, और मैं अपने गायों के लिए ये आभूषण बनाना चाहता हूं, ये मोती के हार मुझे दे दो। तो ललिता देवी ने कृष्ण से कहा तुम्हें एक मोती भी नहीं मिलेगा। तो श्री कृष्ण को बड़ा बुरा लगा, अरे अपमान के मैं नहीं दिया मुझे, ठीक है। तो चले गए वहां से और चले कि वापस आए यहां पर घर में और उन्होंने अपने माँ से पूछा कि मुझे थोड़े मोतियां चाहिए। तो माँ ने कहा क्यों चाहिए? मैं गायों के लिए चाहिए, गायों के लिए थोड़ी मोतियां होती हैं, क्यों चाहिए? आखिर भगवान कृष्ण माता यशोदा से मोतियां मनिया वो जो मोतियां हैं वो ले ली। और फिर जाकर एक खेत में उन्होंने उनको बो दिया। तो मोती कुंड वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण ने सारे मोतियों को बोया, जितने भी थे वो सब उनको बोकर वहां पर वो रहे बैठे, किसी को बताया नहीं। और फिर थोड़े ही समय बाद क्या होने लगा, पौधे आने लगे, पौधे से तो वृक्ष आए और वृक्ष से क्या हुए, ढेर सारे मोती आने लगे। ऐसे संभव है? संभव है या नहीं?
संभव है।
हमारे लिए संभव नहीं है लेकिन कृष्ण के लिए तो क्या संभव नहीं है। तो एक सुंदर वृक्ष हुआ जिसमें से ढेर सारे मोतियां निकलने लगी। तो जितना चाहे उतने भगवान कृष्ण मोती लिए और अपने गाय को सजाया, गौओं को सजा दिया। अब खबर पहुंची कहां, गोपियों के पास। तो गोपियों ने सोचा चलो अगर कृष्ण ऐसे कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते।